सलाम। आज फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पितृ दे दिवस। कोई भी, सिर्फ मनुष्य नहीं, इवन पशु पक्षी भी, इनको दो चीजें तो चाहिए, मां और बाप। और मनुष्यों के लिए हमारे शास्त्र में आता है, मातृमान पितृवान आचार्यवान देवः। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। वही व्यक्ति ब्लेस्ड होता है जिसके तीन चीजें होती हैं, पिता माता और गुरु टीचर। जिनके ये तीन होते हैं ब्लेस्ड होते हैं। उनके जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है, मतलब जैसा भी हम हैं, उनमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, पर बेसिकली पिता माता फादर मदर एंड टीचर। वो टीचर कोई भी हो, आपकी होम ट्यूटर से लेकर एलिमेंट्री स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, या ऑफिस में जो भी आपको गाइड करते हैं, सब आपके टीचर हैं। पिछले बार तो हम पिछले महीने मदर्स डे में मां की चर्चा कर रहे थे। तो पिता का अपना महत्व है हमारे जीवन में, और दोनों में कोई कंपैरिजन भी नहीं है, क्योंकि दोनों की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है। और खास करके जो इमोशनल सपोर्ट है वो दोनों का अलग अलग है। मां की अलग इमोशनल इनपुट होता है, पिता का अपना तरीका होता है, और दोनों का अलग अलग रोल भी है। अब बच्चों के लाइफ में दोनों की जरूरत होती है। और बहुत सारे स्टडीज ये बताते हैं, जिनको पिता का अपने पापा का प्रॉपर सानिध्य मिलता है, मतलब साथ में रहते हैं, वो बच्चे मेंटली भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली भी ज्यादा स्टेबल होते हैं, मानसिक रूप से भी, और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है, जो अपने पिता के साथ रहते हैं, समय गुजारते हैं। इसीलिए दोनों के बिना बच्चा अधूरा होता है, जो सिंगल मदर होते हैं या सिंगल फादर होते हैं। उनके लिए तो जो कष्ट है ही, जो जिस तरह उनको, क्योंकि परमात्मा ने वैसे ही बनाया कि दोनों से ही बच्चे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और दोनों का अपना रोल होता है। पर जब एक होता है तो मां बाप को तो जो मुश्किल होता है डेफिनेटली, पर बच्चा जो आपको बोल नहीं पाता है, वो जिस तरह उसकी ग्रोथ में जिस तरह के कमियां डेफिशिएंसी रह जाता है, वो कोई समझ नहीं सकता है, सिवा वो बच्चा जो सिंगल मदर या सिंगल फादर से पला बढ़ा हो, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता उसकी जो पेन है, उसकी जो सफरिंग है, वो क्या होता है। और पिता कैसा भी हो, मां कैसी भी हो, पर दोनों चाहिए ही चाहिए। खास करके छोटे बच्चों के लिए जो पिता का रोल होता है ना, पिता को जिस तरह छोटे बच्चे देखते हैं अपने पापा को, एक सुपर हीरो की तरह है ना। पापा कुछ भी करे तो लगता है यही सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी यही, सबसे बड़ा इंजीनियर भी यही, सबसे बड़ा राजा भी यही। बचपन में हर बच्चा अपने पापा को उसी तरह से देखता है, अपना आइडियल के रूप में, अपने सुपर हीरो के रूप में वो देखता है। और ये भी स्टडी कहते हैं, ये क्यों कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर रहता है, क्योंकि पापा के होने से बच्चों में एक प्रोटेक्शन की, कि मैं प्रोटेक्टेड हूं, उसकी फीलिंग हमेशा बनी रहती है, सेंस बना रहता है। पिता से प्रोटेक्टिव फैक्टर जुड़ा होता है। पापा हो सकते हैं कमजोर भी हो, उसके बावजूद भी नेचुरली बच्चों में, पिता में ही वो प्रोटेक्टर का सेंस दिखता है। और बड़े इंटरेस्टिंगली, जो फादर को, वैसे फादर शब्द इटसेल्फ ओरिजिनेटेड फ्रॉम पित्री, संस्कृत में जो पिता शब्द है या पितृ शब्द, जिससे दुनिया के मोस्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में जितने भी फादर या मदर से रिलेटेड शब्द हैं, वो इंग्लिश हो, जर्मनी हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, और इंडियन लैंग्वेज तो है ही, सबके सबका ओरिजिन संस्कृत में पितृ से बना है और माँ के लिए मातृ से बना है। और उसकी जो ओरिजिन है, फादर की या पिता की जो ओरिजिन है, वो है पा धातु, जिसका पा रूट है संस्कृत में, जिसका अर्थ होता है टू प्रोटेक्ट, रक्षा करना या प्रोटेक्ट करना। और साउंड नहीं जा रहा है, कोई चेक करेंगे? कोई है भी नहीं। ओके, तो पा धातु से जिसका अर्थ होता है रक्षा करना या प्रोटेक्ट करना। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है पिता के बारे में, दुनिया में जो रिलेशनशिप्स होते हैं जितने, उनमें सबसे ज्यादा जो मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर होता है वो पिता होता है, फादर होता है। मतलब बच्चों के मन में पिता के बारे में मोस्ट ऑफ टाइम मिसपरसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होते हैं। और खास करके जो लड़के होते हैं, मतलब जो बॉयज होते हैं, और वैसे भी साइकोलॉजिकली ये कहा जाता है कि बेटियों का पापा के साथ और बेटों की माँ के साथ ज्यादा कनेक्शन होता है, ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट होता है, ज्यादा अफेक्शन होता है। उसकी रीजनिंग बहुत सारे कारण हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे क्या कारण है कि बेटों के कंपैरिजन पिता से माता से ज्यादा लगाव होता है और बेटियों का पिता से होता है। पर कुछ चीजें पिताओं का यूनिवर्सली पिताओं का लक्षण है, आजकल थोड़े वेस्टर्न एजुकेशन के कारण काफी धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, पर वो बहुत लिमिटेड हैं। आप में से बहुत होंगे जो उस कैटेगरी में हो, जो जो उस आइडियल टाइप की कैटेगरी में हो, पर बहुत रेयरली होते हैं। आमतौर पर पिता जो फादर्स होते हैं वो बड़े अनएक्सप्रेसिव होते हैं, अर्थात माँ की तरह वो ज्यादा हग नहीं करते, ज्यादा प्यार शो नहीं करते, ज्यादा लव यू नहीं बोलते। और इंटरेस्टिंगली आप जो इंडिया से ज्यादातर हम हैं, आपको देखेंगे कितने पिता होते हैं जो अपने बच्चों को, खास करके बेटों को प्यार से गले लगाते हैं। दो थप्पड़ तो 25-30-40 साल में भी थप्पड़ तो मिल जाता है, पर गले लगना मुश्किल से मिलता है। जिन लोगों को गले मिलना मिलता होगा वो रेयरली होंगे, बहुत एजुकेटेड होंगे, तो नॉर्मली नहीं होता। और ऐसा नहीं कि इंडिया में, इवन जब यूरोप अमेरिका में भी जब ज्यादा वेस्टर्न एजुकेशन नहीं था, पापाओं की उसी तरह का नेचर होता था। वो एक शायद ट्रेडिशनल ट्रेनिंग है कि जो पुरुष है वो ज्यादा इमोशन को शो नहीं करता है, उससे उसकी सॉफ्टनेस सामने आता है, और ये सिखाया जाता है भाई तुम मर्द हो तो तुम्हें स्ट्रांग होना है, इमोशंस नहीं दिखानी चाहिए, प्यार आए भी नहीं दिखाना है ना, रोना आए तो रोना नहीं, तो हंसना है तो ठहाके मार के हंसना, पर रो नहीं सकते हो, है ना। तो कुछ चीजें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने के कारण ट्रेडिशनली ये ट्रेनिंग होती है, जिसके कारण पुरुष लोग काफी ज्यादा अनएक्सप्रेसिव होते हैं, खास करके अपने बच्चों के प्रति, और स्पेशियली तो अपने बॉयज मतलब अपने लड़कों के प्रति होते हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग नहीं हैं, आई होप इट्स दैट्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर है जो आप पले बड़े रहते हैं, उसके कारण होता है। और दूसरी रीजनिंग होती है, नॉर्मली पिता लोग जॉब करने जाते हैं, आज भी जाते हैं, बहुत कम हैं जहां दोनों पति पत्नी काम करते हैं। आपके आसपास एरिया में ज्यादा दिखते होंगे, पर वो एक अलग चीज है। पर आप अगर पूरे यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में, यूनिवर्स मतलब अगर पूरे पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इसे बहुत मिनिमम परसेंटेज होगा जहां हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर गोइंग फॉर वर्क आउटसाइड। नॉर्मली पिता लोग आज भी, पुराने तो है ही, आज भी पिता लोग बाहर काम करने जाते हैं तो बच्चों को बहुत कम टाइम स्पेंड करने को मिलता है, और कभी कभी तो बच्चों की जब जरूरत है, बच्चे जब बीमार होते हैं, बच्चों जो इमोशनली डाउन फील करते हैं, तब उनको जरूरत होती है, तब मोस्ट ऑफ टाइम पिता लोग नहीं होते हैं। मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट, जो आर्मी में है, जो पुलिस में है, ऐसे बहुत सारे फादर्स हैं जो अकेले बाहर काम करते हैं, मजदूर हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अपने जॉब के कारण भी घर में नहीं होते, जिसके कारण बच्चों के साथ वो कनेक्शन उनका इमोशनली नहीं बन पाता है। और जिससे ये एक मैसेज जाता है कि पापा जो होते हैं वो प्यार नहीं करते हैं, मां के कंपैरिजन कम करते हैं। मुझे कहीं एक सोशल मीडिया में एक बड़ी अच्छी सी कविता मिली, तो वो मैं आपसे थोड़े शेयर करना चाहता हूं समझने के लिए। लिखा, सभी ग्रंथ शास्त्र कहानी और कविताओं में बहुत कुछ माताओं के बारे में लिखा, पर पिता के बारे में तो बहुत कम लिखा। मां की ममता हमेशा दिखती है पर पिता का प्यार नहीं। 9 महीने तक मां अपने गर्भ में बच्चे का बोझ ढोती है, पिता भी बच्चे का बोझ तब तक ढोता है जब तक उसकी बाहें बूढ़े नहीं हो जाते हैं। घर का सारा काम करने से मां को कभी तनख्वाह नहीं मिलती, ये सच है, पर पिता सारा पैसा घर पर खर्च कर देता है, ये भी सच है। फिर मां के मुकाबले पिता क्यों पीछे रह गए? मां पसंद का खाना बनाती है, कहते ही पापा बाजार से सब कुछ खरीद लेते हैं। दोनों के प्यार एक जैसा है तो भी मां के नाम में ही सम्मान आता है, पर पिता क्यों पिछड़ जाते हैं? बाहर से आकर घर में कदम रखते ही भले ही कोई काम ना हो, मां मां कह के सब उसे ढूंढते हैं, पर पिता को तभी ढूंढते हैं जब कुछ जरूरतें होती हैं। चोट लगने पर मुंह से अचानक मां शब्द ही निकलता है, बाप का ख्याल नहीं आता कभी, पर बाप को कभी इसका मलाल भी नहीं होता। तब भी मां के तुलना में पिता क्यों पीछे रह गए? पूरी आलमारी मां की साड़ियों से भरी है और भाई बहनों की हमारे भी ढेरों पोशाक हैं, पर पिताजी की आलमारी का एक कोना भी भरता नहीं, तब भी पिताजी के मन में जरा भी मलाल नहीं। अगर स्कूल फीस और घर का खर्चा ज्यादा हो जाता है, मां कहती है इस त्योहार में मेरे लिए साड़ी मत लाना, पर पिताजी बस यही पुराना 4 जोड़ा पहनता है और कहता है नहीं, ये सब तो अभी भी नया ही है, अब ज्यादा लाने की क्या जरूरत है। हमें बाइक चलाने देकर खुद आज भी साइकिल चलाते हैं, तब भी उनके मन में थोड़ा सा भी कष्ट नहीं, केवल हमारी खुशी के लिए हमारे सपने पूरा करते करते पिता बहुत पीछे रह गए। पता है क्यों पिता पीछे रह गए? क्योंकि वो हम सबके लिए रीढ़ की हड्डी हैं, रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइनल कॉर्ड, और क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड शरीर के पीछे ही रहता है पर पूरा शरीर का सहारा होता है, अब समझे पिता क्यों पीछे रह गए, वो पिता है और हम सबका अपना पिता है। काफी सारी जो सच्चाइयां है जो पिता के बारे में आपको इसमें, इसीलिए मैंने कविता को उठाया, और सच भी देखेंगे आप लिटरेचर देखें, शास्त्रों में देखें, बहुत कम आपको पिताओं के बारे में मिलेगा, माओं के बारे में आपको ज्यादा ही मिलेगा। मोस्टली पिता का जो इमोशन है वो इनविजिबल होता है। कभी पिताजी थप्पड़ मारते भी हैं तो पीछे पिताजी रोते हैं दरवाजा बंद करके, मां समझाने जाती है और मां को भेजता है, पिता ही भेजता है, जा देखो खाना खाया कि नहीं खाया, और सामने खुद नहीं जाते हैं, फिर वो ईगो का इश्यू रहता है पर मां को पिता ही भेजते हैं, जाकर देखो खाना खाया कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं है, मोस्ट ऑफ टाइम पिताओं का प्यार अदृश्य मतलब एक तरह के इनविजिबल होता है, जिसके कारण वो मिसअंडरस्टूड होते हैं। उसके बारे में एक इंग्लिश में खूबसूरत पोएम है, फिर ए डैड इज समवन हु वांट्स टू कैच यू बिफोर यू फॉल बट इंस्टीड पिक्स यू अप ब्रशेस यू अप एंड लेट्स यू ट्राई अगेन। डैड इज समवन हु वांट्स टू कीप यू फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स बट इंस्टीड लेट्स यू फाइंड योर ओन वे इवन दो हिज हार्ट ब्रेक्स इन साइलेंस। एक मिनट, ये व्हेन यू गेट हर्ट, ए डैड इज समवन हु होल्ड्स यू व्हेन यू क्राई स्कोल्ड्स यू व्हेन यू ब्रेक द रूल्स शाइन्स विथ प्राइड व्हेन यू सक्सीड एंड हैज फेथ इन यू इवन यू फेल। अब किसी ने, अनजान व्यक्ति ने लिखा है ये, कुछ कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो रियलिटी को बयान करते हैं पिताओं के बारे में। शास्त्रों में तो कम मिलेगा, तो आजकल के लोग कुछ लिखते हैं तो उससे ज्यादा आपको गाइडेंस मिलेगा। हमारे शास्त्रों में मनुस्मृति कहता है पिता मूर्ति ही प्रजापते है। पिता जो है प्रजापति, जो क्रिएटर है, प्रजापति का अर्थ है सृष्टि बनाने वाला, पालन करने वाला परमात्मा है। पिता प्रजापति का एक इमेज होता है। अब स्मृति जी भजन गा रही थी, हमने तो भगवान को देखा नहीं पर तुम में हम भगवान देखते हैं, माता और पिता में, वही ये मनुस्मृति की है। पिता मूर्ति ही प्रजापते है। हम ईश्वर को तो फील नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। बहुत रेयरली कुछ प्रिविलेज लोग होते हैं जिनको शास्त्र पढ़ने को समझने को मिलता है, जो समझ पाते हैं कि ईश्वर का क्या हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। बाकियों को तो पता ही नहीं, हम ईश्वर को इसलिए मानते हैं कुछ मिल जाए, है ना, पर ईश्वर का क्या कंट्रीब्यूशन है, ईश्वर क्या है नहीं पता। पर ईश्वर को कोई ढूंढने के लिए जाता है तो मां बाप में वो दिखता है। मां बाप इंसानी शरीर में पिता और माता का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर परमात्मा से देखें वही कंट्रीब्यूशन आपको परमात्मा में दिखेगा। वो कितना भी गरीब हो, पिता भीख मांगता हो या मजदूरी करता हो, अपने बच्चे को देख करके उसकी जिंदगी भर के सारे दुख कष्ट सब दूर हो जाते हैं। बच्चा अगर हंसता है, खेलता है, उसको खाना मिल जाता है, कपड़े ढंग से बच्चा पहन रखा है, पिताजी की खुशी उसी में हो जाती है। महाभारत में आता है तपसा देवतेज्याभिवंदनेन तितिक्षया सुप्रशस्तिरुपायैश्चापि हन्ते पितरः सुतान। और सच कहिए, पिता का हमारे प्रति जो प्रेम है वो हमारे पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है। पिता माता दोनों का, और अपने आप को बाप बनाने के लिए, अर्थात मेरे भी बच्चे हो, इसके लिए जो प्रिविलेज है इनको नेचुरली बच्चे हो जाते हैं, जिनको नहीं होते हैं कितनी पापड़ बेलते हैं। कहते हैं तपसा, उसके लिए वो तपस्या भी करते हैं। देवता इज्जाभिवंदने न, देवता की कितने मंदिरों में जाकर के, मंदिर मस्जिद जो भी पूजा घर में प्रार्थना करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, जिसने जो तरीका बताया सब तरीकाएं अपनाते हैं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो दूसरे ट्रीटमेंट हो, बस बच्चे चाहिए। बच्चों को धरती पर लाने के लिए पिता माता का कंट्रीब्यूशन वहीं से शुरू हो जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक व्यक्ति, वो क्लीनर है और अपनी स्टोरी खुद सुनाता है कि मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताया कि मैं क्या जॉब करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे जाने मेरे जॉब से, जॉब क्या है जिससे उनको शर्म आए। जब भी मेरी छोटी बच्ची मुझे पूछा करती थी कि पापा आप क्या करते हो, मैं घुमा फिरा के बोल देता था कि मैं एक लेबरर हूं, मजदूर हूं। जब भी मैं घर वापस आता था, मैं पब्लिक बाथरूम में नहा धो करके अपने आप को साफ करके आता था कि बच्चों को पता ना चले कि मैं क्या हूं। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, पढ़े लिखे। मेरे पास लड़कियां ही थी चारों। मेरी पत्नी मर गई थी, मैं हर कोशिश करता था कि मेरे बच्चे पढ़े, मैं भूखा रह जाऊं, जैसा भी करूं। कपड़े नहीं पहन खरीदता था लाइफ में कभी, फटे पुराने पहन करके पैसे बच्चों के लिए खर्च करता था। मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चे मेरे जैसे काम करे, मेरे जैसे ह्यूमिलिएटेड हुए। और मैंने अपनी सारी कमाई को बच्चों की, अपनी लड़कियों की पढ़ाई के लिए लगाया, अपने लिए जिंदगी में कुछ नहीं लिया। एक दिन बच्चे की कॉलेज में एडमिशन का लास्ट डेट है, मेरे पास पैसा जुगाड़ नहीं कर पाया, मैंने पैसा नहीं था और मैं किसी तरह मैनेज नहीं कर पाया। उस दिन मैं काम करने नहीं गया क्योंकि मैं दुखी था, मेरे कारण मेरी बच्ची पढ़ नहीं सकती, कॉलेज जा नहीं सकती। तो मैं कूड़ों के ढेर पर बैठ करके रो रहा था, चुपचाप बैठा था, आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी मेरे साथी काम करने वाले लोग मेरे पास आए, मुझे देखा, बिना कुछ बोले बैठे रहे। मुझे लगा मेरे दिल टूट चुका है, मैं अपने बच्चों के लिए किसी काम का नहीं हूं, क्योंकि मैं गरीब हूं और गरीबी में कभी खुशी या अच्छा हो ही नहीं सकता। तो मेरे साथी मुझे मिलकर के चले गए। शाम को जब सब काम खत्म करके मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, चुपचाप बैठ करके बोले, आप हमें अपना समझते हो? मैंने कहा, हां, साथ काम करते हैं आप, हम सब अकेले अपने ही हैं। तो फिर ये लो, मेरे हाथ में उन्होंने अपने उस दिन की जो दिहाड़ी है, दिहाड़ी समझते हैं, जो डेली मजदूरी है ना, वो उन्होंने पकड़ाई। मैंने मना किया लेने के लिए, तो सबने बोला, अभी तो आपने बोला कि हम आपके अपने हैं, तो ले लो, बेटी की एडमिशन ने करा लो, हम उसके लिए एक दिन भूखा रह जाएंगे, वो भी मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके पास पैसा कहां है। पर तुम्हारी बेटी की एडमिशन होना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए। मैं कुछ बोल नहीं पाया और पैसा लेकर गया। उस दिन मैंने एक काम किया, मैं अब पब्लिक बाथरूम में आज नहाया नहीं, सीधे घर गया। अब बच्चों को सीधा बोला कि मैं कूड़ा उठाने वाला क्लीनर हूं। और मुझे आज गर्व हुआ मेरे काम पर। और मैंने बेटी बेटी की एडमिशन के पैसा दी। आज मेरी बेटी यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर में है, बाकी बच्चे भी स्कूल कॉलेज में ठीक ठाक जा रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी पार्ट टाइम जॉब करती है, छोटे बेटियां ट्यूशन कर लेती हैं। एक इंडियन वर्कर की स्टोरी है। अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी बड़ी बेटी थोड़ी बहुत कमा लेती है, तो आप मुझे काम करने नहीं भेजती है, घर में बैठा के रखती है। सारे बच्चे कुछ ना कुछ कमा लेते हैं। हां, महीने में, हफ्ते में कम से कम 2-3 बार मेरी बेटी मुझे लेकर के मेरे साथियों के पास जाती है, खाना बनाकर लेकर के सबको खिलाती है। तो सब शर्मा जाते हैं कि मेरी बेटी उनको खाना ला करके खिलाती है। पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी हमें क्यों खाना खिलाती है बार बार? तो मेरी बेटी उनको कहती है, आप लोग एक दिन भूखा रह करके मुझे पाला था, मेरी पढ़ाई के लिए पैसा दिया था, और उसी के कारण मैं आज हूं। तुम मेरे मुझे आशीर्वाद करें, मैं इतनी बड़ी बनूं कि तुम लोगों को रोज खिला सकूं। आज मैं कभी भी अपने आप को, आज मैं अपने आप को गरीब नहीं समझता हूं, क्योंकि मेरे ऐसे बच्चे हैं। ऐसी बच्चे हैं तो फिर गरीबी का क्या मतलब बनता है, मेरे से धनी और कौन हो सकता है। ये क्लीनर की स्टोरी है, एक बाप की स्टोरी है, और बाप का गर्व उसके बच्चे जब लायक बन जाते हैं, उस लायकपन में बाप की गरीबी और दुख या कष्ट सब उसमें छुप जाता है। पिता का ये जो इनविजिबल और हिडन इमोशन है, जो छुपा हुआ दर्द, छुपा हुआ भाव जो कम दिखाई देता है, पर हमारे लाइफ के हर वो छोटी छोटी चीजों में उनका कंट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, कोई भी शास्त्र आप देखेंगे, उसमें पिता को, परमात्मा को जब हम प्रार्थना करते हैं या परमात्मा को एड्रेस करते हैं, तो पिता और माता के रूप में एड्रेस करते हैं। इवन वेदों में भी, सनह पिते वसु नव अग्नि सुपायनो भव, हे परमात्मा तुम पिता की तरह, फादर मेरे लिए सुपायन, अच्छे अच्छे चीजें लाने वाला देने वाला बनो। पिते व पुत्रान प्रतिनो जुषस्व, जैसे पिता अपने संतानों का, पुत्र का मतलब संतान होता है, बेटा नहीं, मतलब चिल्ड्रेन, जैसे बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा भला करने वाला होता है, हे प्रभु तुम भी हमारे लिए भला करने वाला बनो। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम नमी महे, हे परमात्मा तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो। अब ये तो मैंने वेद के दो तीन कोट किया, वैसे अनगिनत आपको शास्त्रों में मिलेगा जहां हम परमात्मा को मां या बाप के रूप में स्तुति करते हैं। आप आजकल तो हर कमन व्यक्ति वो प्रार्थना बोलते ना, तमेव माता च पिता तमेव, तुम ही मां हो, तुम ही पिता हो। पर प्रॉब्लम है कि हम ईश्वर में मां और पिता के रूप में ईश्वर को एड्रेस करते हैं, पर जो आज की समाज में जिस तरह के हम मां बाप बच्चों के रिलेशनशिप देखते हैं, उसको उल्टा ज्यादा प्रचार करने की जरूरत है, मां बाप में ईश्वर को देखना शुरू करने की, है ना। और खास करके जब मां बाप बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, तब बच्चे अपने मां बाप में उस देवता को, ईश्वर को देखें। जैसे शास्त्रों में ईश्वर को मां और बाप की तरह एड्रेस किया जाता है, इसी तरह पिता और माता को भी भगवान के रूप में, देवता के रूप में एड्रेस करने की, उनको डील करने की जरूरत है। महाभारत में एक स्टोरी आती है, वो एक्चुअली वो स्टोरी ऐसी है कि वो हजारों टॉपिक में वो फिट बैठता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर है यक्ष और युधिष्ठिर का। तो यक्ष बहुत सारे तरह के क्वेश्चन पूछते हैं लाइफ से रिलेटेड, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो हो सकता है अलग अलग प्रसंग में आप वो यक्ष युधिष्ठिर की स्टोरी सुनते होंगे, क्योंकि वो एक क्वेश्चन एक आंसर है। तो यक्ष क्वेश्चन पूछता है, धरती से भी भारी कौन है, विच इज हेवियर देन द अर्थ, और आकाश से भी ऊंचा कौन है, किम स्वित गुरुतरा भूमे है किम स्वित उच्चतरम चखात। तो युधिष्ठिर बताते हैं, माता गुरुतरा भूमे पिता चोच्चतरम चखात, मां धरती से ज्यादा हेवियर है, ज्यादा बोझ ढो सकती है, पापा आकाश से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। ऊंचे वाली कंसेप्ट क्या है, नॉर्मली अब इसको आप ट्रेडिशनल पेरेंटिंग के रूप में देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि मॉडर्न पेरेंटिंग में तो पिता भी उसी तरह के एक्सप्रेसिव होते हैं जैसे मां होते हैं, है ना, तो अब ज्यादा फर्क नहीं है। पर ट्रेडिशनल पिताओं में वो नेचर नहीं होता था। मुझे पर्सनली, मैं अपनी एक शेयर करूं, मैं 24, 25, 27 साल होने तक भी मैं अपने पिताजी से अंदर अंदर चिढ़ता था, मोस्ट ऑफ इंडियन बच्चे चिढ़ते हैं। मैं दिल्ली में रहता था तो मेरी दीदी मुझसे ज्यादा समझदार थी उस मामले में। तो अब दिल्ली में आए, गांव के हैं, दिल्ली में देखा वो टीवी सीरियल मूवी वगैरह में ये पापा लोग कितने प्यार से बात करते हैं, हग करते हैं, हमें तो ये सब मिला नहीं। तो हमने दीदी को लिखा कि ऐसे ही है पिताजी। तो वो दीदी मेरी पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है पर मेरे से ज्यादा ज्ञानी थी। तो लिखा ये फिल्म में और टीवी के चकाचौंध में तुम्हें असली प्यार समझ में आता नहीं है। प्यार सिर्फ किसी को हक करने से, आई लव यू बोलने से नहीं होता है, उसको फील करने की जरूरत होती है। पिताजी तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं वो तो कभी समझ नहीं सकता, तो वो तो हम जानते हैं कि क्या सोचते हैं। तो ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं, ऐसे करोड़ों लोगों की स्टोरी है। हम अपने पिताओं को कभी ना कभी गलत समझते हैं जब तक कोई ना बताए। बहुतों के लाइफ में तो कोई बताने वाला भी नहीं है, कोई दीदी भी या माँ भी नहीं होती है कि बताए, लास्ट तक वो यही समझ के चले जाते हैं हमारे पिताजी बड़े खड़ूस हैं, प्यार करने वाले नहीं है। पिता माता का जो कंट्रीब्यूशन है हम उसको प्यार दिखावट एक्सप्रेशन से देख कोशिश करें मापने के लिए तो समझ नहीं सकते। जो त्याग है, जो सैक्रिफाइस है, जो कंट्रीब्यूशन है उसको फील करने की जरूरत है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं जीवन में जब भी हम बच्चा जब पहली बार गुरुकुल जाता है, गुरुकुल मतलब 7-8 साल का, आजकल 6 साल में बच्चा फर्स्ट ग्रेड में जाता है, पहले जमाने में 7th या 8th ग्रेड में जाता था पहली बार स्कूल में, तो जाने से पहले उसकी जो इनिशिएशन होता था उसको हम कहते हैं उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार। और जनेऊ में 3 धागे दिए जाते थे और उन 3 धागों का सेंस सिर्फ यही था कि जब तुम पढ़ाई करने जाओगे ये 3 चीजें हमेशा याद रखना है। कहते हैं 3 ऋण, 3 डेट्स, पितृ ऋण, मातृ पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तुम्हारे मां बाप का तुम्हारे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है, देवताओं का, परमात्मा से लेकर नेचर का, हर जो छोटा छोटा एलिमेंट है उनका भी तुम्हारे लाइफ में छोटा बड़ा एलिमेंट है, क्या कंट्रीब्यूशन है, यह भी याद रखने लायक है। और ऋषि ऋण जो ज्ञान की जो परंपरा है वेदों से लेकर अभी तुम्हारे स्कूल के टीचर तक जो कुछ भी तुम ज्ञान पाते हो उसका क्रेडिट सारा सिर्फ तुम्हारे टीचर को नहीं जाता है। बड़े इंटरेस्टिंग है, हमारे यहां टीचर्स के लिए ऋण नहीं बताया, ऋषि ऋण बताया। तुम्हारे ज्ञान में टीचर्स का रोल छोटा होता है, ये पूरी पूरी लीनेज है। वो टीचर कहां से सीखा, कोई बुक पढ़ के सीखा, वो बुक किसने लिखा, किसी ऑथर ने लिखा, उस ऑथर को कहां से ज्ञान मिला, ये फ्लो है, नदी का फ्लो है, उसमें करोड़ों लोगों का कंट्रीब्यूशन है। वो पूरी जो परंपरा है उसके प्रति तुम उसके प्रति ऋणी हो, सिर्फ टीचर के प्रति नहीं। टीचर तो सिर्फ फेस है, इसको ऋषि ऋण कहा। और देखो बड़े इंटरेस्टिंगली पढ़ाई के साथ ही जनेऊ क्यों दिया, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा एजुकेटेड होते जाओगे ये एजुकेशन का एजुकेटेड होते हुए इन 3 चीजों को ध्यान रखोगे, याद रखोगे, तो चुकाओगे कैसे, क्योंकि मां और बाप का ऋण मतलब पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई किया या मां बाप को कुछ पैसे दे दिया, कुछ सेवा कर दिया, चुक गया, मतलब चुका ही नहीं सकते हो। तो पितृ ऋण चुकाने की क्या तरीका बताई, बोले खुद मां बाप बनो, अपने बच्चों को पालो, उसी से चुकता होगा। क्योंकि तुम कितना भी मां बाप की सेवा करोगे, कितना भी पालोगे, वो ऋण तुम नहीं चुका सकते हो। कितने रातों को जो वो नींद खराब करके तुम्हारे लिए जागे बैठे थे, तुम्हारे लिए अपने पेट पर पानी पी करके जो तुम्हारे लिए खाना ला, मैं गरीब लोगों की बात करता हूं, इवन जो धनी भी हैं, जो वेल टू बींग भी है, उनके भी अपनी समय, ऐसा नहीं है कि जो गरीब हैं सिर्फ वही सहते हैं, बड़ों की होते हैं। जो इमोशनल, जो जो फिजिकल जो सैक्रिफाइस है उसको आप कभी भरपाई नहीं कर सकते हो। उसकी भरपाई करना चाहते हो अपने बच्चों को ठीक से पालो, पर अपने पिता माता के प्रति श्रद्धा रखना बड़ा जरूरी है। और खाली इतना नहीं, हमारे यहां जो गृहस्थी के बाद, जब गृहस्थी आप कब बनते हैं, जब आपकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो विवाह के बाद कहते हैं तुम्हारे पांच अब ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज आ गए, अब आपको निभाना है, रोज करना है। इसको हमारे यहां महायज्ञ कहा। यज्ञ जो जो अग्नि में आहुतियां देते हैं वो सिर्फ यज्ञ है, जो महा जो ग्रेट यज्ञ है वो क्या है, वो तुम्हारी जो ऑब्लिगेशंस हैं। ब्रह्म यज्ञ, परमात्मा के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना, उनके प्रति भक्ति रखना, शास्त्रों को पढ़ना, ये ब्रह्म यज्ञ है। देव यज्ञ, नेचर के प्रति ग्रेटफुल होना, ये देव यज्ञ है। पितृ यज्ञ, अपने मां बाप के प्रति ग्रेटफुल होना, खाली बोलने की बात नहीं है कि आई एम ग्रेटफुल टू, आई अप्रिशिएट टू, ये तो वैसे ही है, मतलब फील करना, फील करो तो फिर वो काम में दिखता है, वो पितृ यज्ञ है। आगे हम आगे नहीं जाएंगे। अब ये जो मीडिएबल एज में हमारे यहां ये पिता माता के लिए श्राद्ध की परंपरा शुरू हुई, श्राद्ध और तर्पण। मरने के बाद हम पिता माता के बारे में ज्यादा सोचते हैं, प्रतिवर्ष श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध के नाम पर ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, तर्पण के नाम पर नदी में जाकर के पानी अर्पित करते हैं। तर्पण का लिटरेरी मीनिंग है तृप्त करना, किसी को सेटिस्फाई करना, खुश करना। और सोचते हैं मरने के बाद हर साल गंगा में यमुना में जाकर के पानी ऐसे चढ़ाओ सूरज की तरफ देख करके, तो पिता तृप्त हो जाते हैं, पिता माता। मरने के बाद हर साल वर्षी के दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाने से श्रद्धा, श्राद्ध का अर्थ समझते हैं, श्रद्धा से किया जाने वाला काम हो जाता है। हमें कोई सिखाया नहीं, हमें कोई आज ना पंडित जी, ना आचार्य, ना साधु सन्यासी, अरे जीते मां बाप को पूजो, उनकी श्रद्धा श्राद्ध करो। श्राद्ध करो मतलब श्रद्धा से किया गया कर्म को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा क्या है? श्रत मतलब सच, सच्चाई, धा धारण करना, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करके जो कुछ करोगे वो श्रद्धा है। सच्चाई क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हारे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है, पहले ये एक्सेप्ट करो, इसको रियलाइज करो, पेरेंट्स की क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे लाइफ में, फिर जो कुछ तुम करोगे वो श्राद्ध बनेगा। पर हमें हमारी रिलीजियस सिस्टम अलग टाइप के चलते हैं, उनमें बहुत कुछ और चलते रहते हैं, जिसके कारण हम जीते जी हम मां बाप की रेस्पेक्ट करना कम करते जा रहे हैं, उनकी सेवा करना, उनका ख्याल रखना कम करते जा रहे हैं। हम ज्यादा मरने के बाद आर्टिफिशियल एग्जिबिटरी चीजें ज्यादा करते जा रहे हैं। अगर श्राद्ध ही करना है, तर्पण ही करना है, बूढ़े मां बाप के पास बैठो, टाइम स्पेंड करो, उनसे बात करो। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये कोई अपनी बात नहीं, यज्ञ का डेफिनेशन यही है, दान देव पूजा संगति करना, पितृ यज्ञ का यही भाव है। कभी उनसे गले मिलो, कभी पैर भी दबा लो, कभी पैरों के नीचे बैठ जाओ, छोटा नहीं हो जाता है, पिछले बार भी बताया था, कभी मौका मिले मां और बाप के चरणों में वैसे ही बैठ जाओ, थोड़ा दवालिया करो। जो व्यक्ति मां बाप और गुरु के सामने जितना छोटा बनता है वो जीवन में उतना ही बड़ा बनता है, और जो मां बाप और गुरु के सामने झुकने की आदत नहीं डाला वो बहुत रेयरली बड़ा होता है। तीन जगह तो आप झुको, परमात्मा को कोई मानता है नहीं मानता, नास्तिक हैं आस्तिक हैं चलो, पर अपने मां बाप और जिन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, टीचर्स, अभी यहां अमेरिकन कल्चर में तो टीचर्स की कोई कोई इज्जत ही नहीं है। अरे इवन हमारे इंडियन बच्चे भी यहां आकर के बदल जाते हैं। ये तुम्हारी कल्चर का सबसे सबसे बढ़िया चीज है। अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टीचर को दिल से रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट करने का अर्थ नहीं कि चमचागिरी करो या उनको गुलामी करो, नहीं। शो देम योर रिस्पेक्ट, आप कितने ग्रेटफुल हो। तो पिता माता के चरणों में कभी बैठ जाएं, पिता के कभी पैर भी दबा लिया करें। पिता माता की ज्यादा जरूरत होती है जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, जब वो काम करना, जब उनका शरीर साथ नहीं जाता है, तब वो ज्यादा हमें ढूंढते हैं। देखिए नेचर का बड़ा विचित्र खेल है। बच्चे जब चलना फिरना नहीं जाते हैं, फिजिकली बहुत कमजोर होते हैं, माँ बाप स्ट्रांग होते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, हर मौके पर उनका सहारा बनते हैं। फिर आपको पता है हिंदू शास्त्र, हिंदू धर्म में, फिलॉसफी में हर चीज साइक्लिक मोड में होता है। फिर माँ बाप बच्चे बन जाते हैं, अब वो भी भूलने लगते हैं, फिजिकली कमजोर होते हैं, ज्ञान कम काम करता है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तब बच्चे बड़े हो जाते हैं। उस अब बच्चे कितने बड़े होते हैं, बिल्कुल उसी एज के आ जाते हैं जिस एज में उनके माँ बाप थे जब वो छोटे थे। तो बच्चे माँ बाप बन जाते हैं। अब बच्चे माँ बाप को उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं। माँ बाप को डांटते नहीं है, खाना होगा, दवाई खाना पड़ेगा, टाइम पर सोया करो। उस डांट में प्यार होता है, माँ बाप को भी अच्छा लगता है। वो डांट नहीं जो पैसा कमाओ, जो जमीन जायदाद लिख दो छोड़ेंगे, भारत में बहुत करते हैं आजकल। उस प्यार वाली डांट में भी माँ बाप खुश होते हैं, उनको लगता है जीवन सफल हो गया है ना। एक छोटी सी कहानी कह करके बात पूरा करेंगे। एक बेटा, उसकी मां की डेथ हो गई। जब मां की डेथ हो गई तो उसने पिताजी को अब कौन संभाले, उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। ठीक है, ओल्ड एज होम में छोड़ा, बेटा अपना लाइफ में बिजी रहा। तो जब बहुत बुजुर्ग हो गया, मतलब ओल्ड एज होम में भी जब लास्ट टाइम आया पिता का, तो उन्होंने अपने बेटे को मैसेज भिजवाया कि मिलने आओ। तो बेटा जब उसमें मिलने आया तो पिताजी ने बोला कि बेटे इस ओल्ड एज होम में ना बहुत इतना ज्यादा फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, तो यहां फैन नहीं है, बहुत गर्मी लगती है, तो ऐसा करना मेरे मरने के बाद यहां फैन सब कमरे में एक एक फैन डोनेट करना, सब फैन में, और इस ओल्ड एज होम में फ्रिज नहीं है, खाना रखने के लिए मुश्किल होता है, खाना खराब हो जाता है, कभी भूखा रहना पड़ता है, कभी सूखा खाना पड़ता है, तो यहां फ्रिज डोनेट करना, और गर्मी में सड़ना पड़ता है तो पंखा जरूर लगाना, पर मेरे मरने के बाद लगाना। बेटे को यह समझ में नहीं आया, ये तो समझ में आया कि भाई ओल्ड एज होम में फैन डोनेट करो, फ्रिज डोनेट करो, ये समझ में नहीं आया कि मेरे मरने के बाद क्यों। उसने पूछा ये ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मरने के बाद। बोले बेटे अब तो कितना दिन जीऊंगा, तो मर जाऊंगा मैं, अब हमारी आदत पड़ गई बिना पंखे में गर्मी में रहने की, सूखे गले खाना खाने की आदत पड़ गई, अब कितने दिन जिएंगे। मुझे मेरी चिंता नहीं है बेटे, मुझे तो तेरी चिंता है। तेरे बच्चे अब छोटे हैं, कल वो बड़े होंगे, तुझे भी ओल्ड एज होम में छोड़ देंगे, अब ऐसे बिना पंखे वाले में तू कैसे रहेगा, बिना फ्रिज का तू कैसे खाना खाएगा, मुझे उसकी चिंता है। इसीलिए लगवा देना, अपनी तैयारी कर लेना। देवियों सज्जनों, लाइफ तो सर्कल में चलता है, हम मां बाप के लिए जो करते हैं हमारे बच्चे हमारे साथ वही करेंगे, कम बहुत करेंगे, और ये नेचर है। अपने मां बाप को रिस्पेक्ट करें। एक श्लोक और इंटरेस्टिंग श्लोक के रखता हूं, पूरा करेंगे। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतेरपि। मनुस्मृति कहता है हजारों सैकड़ों साल तुम्हारा बीत जाए, तुम्हारे पिता माता ने जो तुम्हारे लिए कष्ट सहा है, जो सैक्रिफाइस किया है, वो तुम हजारों सैकड़ों साल में भी चुका नहीं सकते हो। उपाध्यायम पितरम मातरम च ये विद्रोहंती मनसा कर्मणा वा तेषां पापम भ्रण हत्या विशिष्टम तस्मान्नान्य पाप कृद अस्ति लोके। और जो व्यक्ति अपने उपाध्याय टीचर को, पितरम पिता को, मातरम मां को अविद्रोहति हिंसा करता है, मेंटली हो, ओरली हो या फिजिकली हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उनको भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा पाप होता है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या वाला जो फेटस किलिंग है ना, जो जो अबॉर्शन करते हैं, अबॉर्शन है ना करते हैं, भ्रूण हत्या से भी बड़ा पाप उसको लगेगा। और इस पाप का कोई 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 मुक्ति नहीं है। इसीलिए आयुर्यशो बलम वित्तम आकांक्षत भी प्रियाणि च पिते वाराधनियोग्रे दैवतम ही पितामह। अगर तुम चाहते हो, तुम्हारा तुम अगर खुशी चाहते हो, बल चाहते हो, आयु चाहते हो, यश चाहते हो, अपने पिता को और पिता माता को रिस्पेक्ट करो, आदर करो। पिता माता ही तुम्हारे लिए देवता हैं, उन्हीं को देवता समझो तो तुम्हारा भी कल्याण। और तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, जब तुम बूढ़े बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कल्याण कैसे होता है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ उसी तरह ट्रीट करेंगे। तो इसी के साथ इस बात को विराम देते हैं।